તારીખ 26/8/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 238 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 181
પ્રશ્ન 238 પ્રથમ જ્ઞાન છે આત્મા કા સ્વરૂપ કા ભેદ પૂર્વક વિચાર કરે કે હું આવા સામર્થ્યથી ભરેલો છું. પ્રશ્ન મેં શું શબ્દ અધ્યાર છે હિન્દીમાં ક્યાં બોલે કે ક્યાં પ્રથમ જ્ઞાન છે આત્મા કા સ્વરૂપ કા ભેદપૂર્વક વિચાર કરે. આપ શું આવો વિચાર કરે પહેલા કે હું આવા જ્ઞાન સામર્થ્ય ભરેલો છું. જો 237 ચલા ઉસકે અનુસંધાન મેં યે પ્રશ્ન હૈ કે વહાં વ્યવહાર કે બહુત ભેદ હોતે હૈ ઔર મુખ્યતા તો ભેદ કી હોતી હૈ. તો ફિર ક્રમ કા વિષય લિયા કે પહેલે એસા ભેદપૂર્વક વિચાર ચલે ક્યા કે મેં એસા 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 કે સામર્થ્ય વાલા હું એસા પ્રશ્ન કિયા હૈ. તો જો ભેદ હૈ ઉસકા નિષેધ ઉસકી ગૌણતા કરાઈ તો ઉસકી આવશ્યકતા કહાં હૈ કૈસે હૈ કિસ ભૂમિકા મેં હૈ વો ચર્ચા ચલતી હૈ. તો પ્રથમ પહેલે એસા હોતા હૈ પ્રથમ એસા ભેદ વિકલ્પ હોતા હૈ ઔર વો વિકલ્પ સે નિશ્ચય ભી હોતા હૈ કે મેં એસા હું. વિકલ્પાત્મક નિશ્ચય હૈ. નિશ્ચય દો પ્રકાર કા હોતા હૈ. એક વૈચારિક ભૂમિકા મેં બૌદ્ધિક સ્તર પે હોતા હૈ ઔર એક પ્રયોગ કી ભૂમિકા મેં પ્રયોગ સિદ્ધ નિશ્ચય હોતા હૈ. જો વિચાર કી ભૂમિકા મેં નિશ્ચય હોતા હૈ ઉસમેં ન્યાય તર્ક અનુમાન ઇસ પ્રકાર કે કઈ બાતેં શામિલ હોતી હૈ ઔર નિશ્ચય હોતા હૈ. ન્યાય સે બાત બરાબર હૈ તર્ક સે ભી સિદ્ધ હોતી હૈ અનુમાન ભી એસા હી લગતા હૈ ઔર આગમ મેં ભી એસા હી કહા હૈ. એસે ન્યાય આગમ તર્ક અનુમાન વગેરે ચલતા હૈ. તો વો નિશ્ચય કરને કા નાપને કા પ્રમાણ કરને કા એક તરીકા હૈ વૈચારિક ભૂમિકા કા. उसको न्याय प्रमाण तर्क प्रमाण आगम प्रमाण अनुमान प्रमाण ऐसा बोला है शास्त्र में. प्रयोग से जो सिद्ध होता है सम्मत होता है निश्चय होता है उसको अनुभव प्रमाण कहते हैं. और आगम में वो भी कहा है कि ऐसे पांच प्रमाणों में अनुभव प्रमाण बलवान प्रमाण है. આગમ પ્રમાણ બલવાન પ્રમાણ હૈ એસા નહીં કહા. આગમો ને ભી અપની બાત નહીં રખે. આગમ ને યે નહીં કહા કે આગમ પ્રમાણ બલવાન હૈ. આગમ ને યે કહા કે અનુભવ પ્રમાણ બલવાન હૈ. આગમ અપની બાત કી પકડ નહીં કરતા અનુભવ કે આગે. ક્યોં કે રાગી હૈ વો યે અપની બાત કી પકડ કરતા હૈ બીત રાગી અપની બાત કી પકડ નહીં કરતા હૈ. વો તો સહી બાત કે બતા દેતે હૈ. તો બીતરાગી આગમ યે કહેતા હૈ કે અનુભવ પ્રમાણ બલવાન હૈ. આગમ પ્રમાણ ઉતના બલવાન નહીં હૈ જીતના અનુભવ પ્રમાણ બલવાન હૈ. યે બીતરાગી આગમ હૈ. મિત્રા કે ગુરુ યે કહેગા
જી બોલો
કે તુમ હમારી ઓર ઝુકતા હૈ
જી.
અબ તુમ તુમ્હારે સ્વરૂપ કી ઓર ઝુકો क्योंकि हमें अपेक्षा नहीं, हमें अपेक्षा नहीं है, नहीं कहेगा क्योंकि दोनों मित्रागी है। ऐसे आगम भी वही कहेगा कि तुमने आगम बहुत पढ़ा, तो अनुभव में आ जाओ। ये तीनों का फरमान है। उधर क्या कहा कि पहले विकल्प द्वारा निश्चय करते हैं, निश्चय करने में विकल्प द्वारा उस प्रकार से चारों प्रकार से निश्चय करते हैं। विचार में ऐसा भेद के विचार बीच में आए बिना रहता नहीं। तो ये जो भेद है उस भेद का यहाँ क्रम में पहले नंबर आ गया है। तो तुम पहले संसार के विचार करता था, अभी आत्मा के विचार में आया कि आत्मा में क्या क्या चीज है, आत्मा क्यों महान है, इसका सामर्थ्य किस किस प्रकार का है। ठीक है, चलो वो तो छूटा, संसार की पंचायत तो छूटी। अब आत्मा का विचार करने लगा तो श्री गुरु ने कहा कि देखो भी, तो तुमको दूसरा विचार छुड़ाने के लिए हमने ये बात कही, क्योंकि तुमको वहाँ की महिमा थी, तो वही विचार चलता था। संसार के पदार्थों की महिमा थी, संसार के प्रसंगों की महिमा थी, तो उन प्रसंगों का, उन पदार्थों का तुमको विचार चलता रहता था। अब तुम्हारा स्वरूप में हम क्या क्या चीज है वो बताया, अगर तुम उसकी महिमा है तो इसका विचार चलेगा। ठीक है, तुमने अपना रास्ता बदला विचार का, वो ठीक है, लेकिन वो बात पर्याप्त नहीं है, वो बात पूर्ति नहीं है। अब भेद विचार से तुम अपना पैर उठा लो, वहां मत खड़े रहो, तुम अभेद में आ जाओ। तो सीढ़ी पर पैर रखाते हैं, ऊपर की सीढ़ी पर जाने के लिए पैर उठाने का भी होता है, बस ऐसी बात है, ऊपर आने के लिए। तो विचार में ऐसे भेद के विचार, ऊपर जाने वाले को मैंने अभेद की दृष्टि करने वाले को बीच में आए बिना रहता नहीं। उस वक्त भी ऊपर जाने वाले को पता है, मालूम है कि हमको यहाँ रुकना नहीं है। जो कोई विचार में रुकता है वो कौन रुकता है कि जिसको मालूम नहीं है वो रुकता है। तो जिसने पहले से समझ लिया है वो विचार में रुकने वाला नहीं है। उसने देख लिया कि मेरा विचार का जो परिपाटी था वो बदल गया है, अभी मुझे संसार के पदार्थों की कीमत नहीं है, तो उसके विचार नहीं चलता है, उसमें अपनापन बहुत कमजोर हो गया है, तो उसका विचार ज़्यादा नहीं आता है। अब मैं इस विचारों को छोड़ करके अभेद पर दृष्टि जमा दूँ, वही मेरा कर्तव्य है। दृष्टि अभेद ऊपर गई और उसमें लीन होते ही विकल्प टूट करके उसमें से स्वानुभूति प्रकट होती है। हिंदी अभी क्यों से ना, ऐसे को हिंदी दिया है, हिंदी दिया ना, ठीक है, वो हिंदी अभी प्रकाशन हो गया। दृष्टि अभेद ऊपर गई तो क्या है, थोड़ा हम तो गुजराती का हिंदी करके बोलते हैं, थोड़ा फर्क आएगा, शब्द में फर्क आएगा, भाव तो वो का वो है, शब्द का फर्क आएगा। दृष्टि अभेद पर गई और उसमें लीन होते विकल्प टूटकर उसमें से सहानुभूति प्रकट होती है। तो दृष्टि संधान का कार्य हुआ, लीनता हुई चारित्र का काम हुआ और अनुभूति माने स्वसंवेदन हुआ, वो ज्ञान का कार्य हुआ। ऐसे तीन प्रधान गुण है आत्मा के परिणमन में, अनंत गुणों के परिणमन में तीन प्रधान गुण है। वो पहले संसार में उल्टा कार्य कर रहा था तीनों, वो बिल्कुल अबाउट टर्न हो गया, उल्टा उल्टे में से सुलटा हो गया, दृष्टि भी अभेद स्वरूप पर गई, स्थिरता लीनता भी अभेद स्वरूप में गई और अनुभव स्वसंवेदन भी अभेद स्वरूप का हुआ। तो दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता हुई, वही मोक्ष का मार्ग प्रकट हुआ। पहले निश्चय करे विकल्प द्वारा आत्मा के सामर्थ्य का, भेदों का विचार करे, ऐसा व्यवहार बीच में आएगा, व्यवहार बीच में आएगा, पीछे बाद में ये मति श्रुत की बुद्धि को समेट करके निर्विकल्प होता है। मति श्रुत ज्ञान में भेद विचार चलते थे, उसको समेट लिया, उसको समेट लिया। तो पहले से वो लक्ष्मी बात है कि हमको भेद विचार में जाकर के विकल्प को बढ़ाना नहीं है, हमको विकल्प को मिटाना है। इसलिए बढ़ाने का प्रवृत्ति हमारे से नहीं हुए, वो बात पहले से लक्ष्य में रखी है। अभी तो समझाते हैं, लेकिन जिसको शांति चाहिए उनको विकल्प की झंझाल अच्छी नहीं लगती। जैसे सुगानी जी का दृष्टांत है, शास्त्र का अध्ययन तो करते थे लेकिन आत्मधर्म में वो बात पढ़ी, श्रावकों का आवश्यक की बात कोई चली होगी, आगम में श्रावक का छह प्रकार का आवश्यक प्रतिदिन बताया है, छह प्रकार का करने लायक कार्य, उसको आवश्यक कार्य कहते हैं, तो कार्य शब्द नहीं बोलते, छह आवश्यक, पूजा स्वाध्याय दान ऐसे नियम, वैसे दिने दिने प्रतिदिन करते हैं श्रावक। गुरुदेव प्रवचन करते हुए बोले होंगे कि ये छह प्रकार का आवश्यक व्यवहार है, परमार्थ में तो आत्मा का एक ही आवश्यक होता है, दो आवश्यक नहीं होता है, छह की बात छोड़ो, एक ही होता है, और वो आवश्यक है स्वरूप में लीन हो जाना, जम जाना, स्वरूप में जम जाना, वही एक आवश्यक है, वही परमार्थिक कार्य करने लायक है। तो उनका लक्ष्य वो था कि लंबे चौड़े विकल्प हमको बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो बात जच गई, एकदम वो बात जच गई। अरे ये मुझे तो वही चाहिए था, ये छह आवश्यक वाली बात तो कई बार पड़ी है और मैं कुछ करता भी हूँ लेकिन मुझे कुछ शांति नहीं मिलती, पूजा भी करते थे, स्वाध्याय भी करते थे, शांति नहीं मिलती थी। तो वो क्या देखा, अपने परिणमन को देखा कि आगम कहता है वो छह प्रकार में से कुछ प्रकार में करता हूँ या छह करते होंगे या कुछ करते होंगे, मेरे को शांति तो नहीं मिलती, और एक ही आवश्यक में लगता है कि शांति मिल जाए, विकल्प बंद हो जाए, तो अशांति और शांति की तुलनात्मक विचारधारा में उन्होंने एक आवश्यक को पसंद किया। ये बात हमको ठीक लगती है, जबकि वो बदागम की थी और ये बात अध्यात्म की थी। जरूरत किसकी थी? आत्म शांति की। जिसकी जरूरत होती है उसकी रुचि होती है, रुचि उसको शांति की थी। और छह प्रकार में अशांति दिखती थी। तो सहज बिना समझाए उनका झुकाव जो है वो इस बात पर हुआ। वो झुकाव उतना हुआ कि कहने वाले को प्रत्यक्ष मिलने का भाव हुआ। कोई समझाने को नहीं किया कि प्रत्यक्ष योग हुए बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। बात वहां कोई समझाने वाले नहीं थे, लेकिन जरूरत जो है वो इस बात को ग्रहण कर लेती है। आवश्यकता लगी ऐसे बात करते हैं, हो सके कि आत्म शांति का सच्चा उपाय वहां से मिल जाए। तो उन्होंने चिट्ठी नहीं लिखी कि महाराज आपका प्रवचन पढ़ा अब मेरे को तो आत्म शांति चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो बिजनेस में अकेला हूं, दुकान छोड़ करके कैसे आऊं, कृपया मुझे आत्म शांति का उपाय लिख दीजिए। चिट्ठी से नहीं मंगाया और उन्हें टेलीफोन किया, का टेलीफोन भी नहीं किया। कम्युनिकेशन के जो साधन है वो तो परोक्षता के लिए है, विचार जोर से प्रत्यक्षता का आया। बाह्य परिस्थिति प्रतिकूल होने के बावजूद भी विचार क्या आया? प्रत्यक्षता का विचार आया। किसने सिखाया था? कहने पर भी लोगों को ध्यान नहीं जाता है तो बिना कहे ध्यान गया, ये इसकी पात्रता का सूचक है। देखो 1000 किलोमीटर आगे वो अजमेर से सोनभद्र, 1000 किलोमीटर तो नहीं, वो कम से कम 600 किलोमीटर होगा, 600-700 किलोमीटर, 200 अहमदाबाद है ना, 400-500 वहां से होगा आगे, और बिल्कुल अनजाने क्षेत्र में, अनजाने लोगों के बीच में और अनजानी भाषा बोलने वालों के बीच में। तो उतनी तीव्र जिज्ञासा से वो सुन रहे थे, उतनी तीव्र जिज्ञासा से वो सुन रहे थे कि उनको गुजराती हिंदी की तकलीफ नहीं हुई। गुरुदेव तो गुजराती में प्रवचन करते थे, बहुभाग हिंदी लोग ज्यादा आ जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं महाराज हिंदी में फरमाइए, तो फिर हिंदी ऐसी कच्ची पक्की हिंदी बोल देते हैं, पूरी हिंदी तो आती नहीं। तो उन जमाने में तो गुजराती में प्रवचन, 2002 की साल है, 50 साल हो गया इस प्रसंग को, कितना साल हुआ? 50 साल हुआ। 50 साल पहले गुरुदेव के प्रवचन तो हिंदी में होते नहीं थे, हिंदी भाषी जनता उतनी आती भी थी। आत्मधर्म हिंदी नया नया निकाला था उन दिनों में, हिंदी भाषी भी लोग आने लगे बाद में। गुजराती में बोलते थे फिर भी कोई तकलीफ नहीं हुई, अनुभव तक पहुंचने में भाषा की तकलीफ नहीं हुई। हमारे यहाँ तो खिंचाता नहीं होती, हिंदी में बोलो तो कहीं गुजराती में बोलो, गुजराती बोलो तो कहीं हिंदी में बोलो। हाँ? किसके लिए? कि दूसरों को समझ में नहीं आता। क्यों? हम इसलिए खिंचाता नहीं करते हैं कि दूसरों को समझ में नहीं आता। दूसरों को समझ में नहीं आता तुमको खुद को समझ में आता क्या? नहीं आता वो कहीं भी, हमको भी समझने में दिक्कत होती है। भाव पकड़ो, तुम अपने बच्चे को बोलता है कि तुम चोखा बोलो, तोतला तोतला मत बोलो, छोकरा ने कहते तो थोड़ा बोलिस, तुम नहीं समझो, तुम चोखू बोलते तू तो खूब उधम करे से, उनको तो उसकी तोतली भाषा भी उसकी वाणी भी प्यारी लगती है, लगती है कि नहीं लगती? और बिना बोले भी उनके भाव पकड़ने का कोशिश करता है, करता है कि नहीं करता? छह महीने का बच्चा पालना में झूलता है तो उसको हंसाते हैं, उसको डराते हैं, पुतोल के देखो डरता है कि नहीं डरता है, हाथ निकालता है तो वो रोने लगता है, वो बच्चा भी भाव पकड़ता है छह महीने वाला। तो तुम इतना बड़ा हो गया, तुम भाव नहीं पकड़ सकता क्या? पालना में झूलने वाला भी भाव पकड़ता है, कहीं प्यार से बुलाता है तो हंसता है, ठाको ठोकर है तो रोवा मंडे। गुरुदेव कहते थे बच्चे को नाने का पसंद नहीं आता है, नाने का अच्छा नहीं लगता है, तो कैसे बोले मारो दीकरो डायो पाटले बेसी ने नहीं बेसी जा पटला ऊपर, बेसी जा पटला ऊपर, हम करें बेसर दिए तू बहु डायो बहु डायो। उसकी प्रशंसा करके काम निकलवा लेती है। दुनिया जिनवाणी भी ऐसा ही करते हैं, देखो तुम अनंत ज्ञान से भरा हो, तुम अनंत आनंद से भरा हो, तुम तो बहुत विवेक वाला हो, है आत्मा का गुण है, तीर्थंकर के दिव्य ध्वनि भी गाती है। हाँ बच्चा मान जाता है, यहाँ बड़ा मानता नहीं है, यह आपत्ति है बड़ी। तो कहाँ से बात चले कि मति श्रुत की बुद्धि को समेट करके निर्विकल्प होता है, क्योंकि वो ख्याल में है कि जितना विकल्प ज्यादा चलता है, तेजी से चलता है, चंचलता से होता है, उतनी आकुलता बढ़ती है, और वही परिणाम की अस्थिरता है, वही परिणाम की अस्थिरता है, चंचलता है, वो मलिनता को ले आती है। क्या है? चंचलता कारण पड़ती है और उसमें मलिनता का कार्य हो जाता है। इसलिए जिसको मलिनता नहीं चाहिए उसको चंचलता भी नहीं चाहिए। मुमुक्षु की भूमिका में कौतूहल वृत्ति का निषेध क्यों किया जाता है? कि तुम कुतूहल छोड़ो, कुतूहल अगर करना ही है तो परम तत्व के विषय में कुतूहल करो कि मेरा स्वरूप कैसा है, और कुतूहल छोड़ो। क्यों? ये चंचलता को बढ़ाने वाली है, तो चंचलता से मलिनता ये बिना रहेगी नहीं। तो वो बात जिसको ख्याल में है, समझ में है, वो मति श्रुत के विकल्प को समेट लेता है। कौन सा विकल्प है? स्वरूप संबंधित विकल्प है। यहाँ संसार के कार्य के विकल्प तो होते ही नहीं है, स्वानुभव होने वाले को उस भूमिका में, उनको स्वरूप को विकल्प, स्वरूप का विकल्प चलता था कि मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं आनंद स्वरूप ही हूँ, शांत हूँ, मैं निर्विकल्प हूँ, निर्विकल्प का विकल्प चलता है। तो उस भेद को गौण करके और वहां जो अभेदता है स्वरूप में अभेदता है उसकी मुख्यता करके स्वयं के रूप में इसका अवलंबन कर लेकर के और अवलंबन में उग्रता आती है तो लीनता हो जाती है। तो ये जो विकल्प थे वो पहले मंद हो जाते हैं, सूक्ष्म हो जाते हैं, चंचलता कम हो जाती है, फिर वो उत्पन्न होना बंद हो जाता है। निर्विकल्प स्वरूप पर मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा एक अवलंबन में उग्रता आती है, जोर आता है, उसको कहते हैं सम्यक पुरुषार्थ। क्या कहते हैं उसको? कि मैं प्रत्यक्ष निर्विकल्प हूँ। निर्विकल्प हूँ ऐसा नहीं, प्रत्यक्ष ही निर्विकल्प हूँ, ऐसा उसमें अंतर अवलंबन का पुरुषार्थ तीव्रता से चलते ही विकल्प उत्पन्न होना बंद हो जाता है। तो विकल्प का अपने रूप जो अनुभव था वो छूट गया है। पर्याय बुद्धि में, पर्याय दृष्टि में जो जो विकल्प होता था, ऐसा मैं हूँ ऐसा एक अनुभव भी साथ साथ चलता था, तो अनुभव का विपर्यास था। तो विकल्प भी उत्पन्न नहीं हुआ तो वो अनुभव तो रहा नहीं। और जो निर्विकल्प परिणमन हुआ वो तो निर्विकल्प स्वरूप के अवलंबन से, आश्रय से हुआ। तो फिर मैं निर्विकल्प पर्याय में हूँ वो बात भी नहीं रही, क्योंकि आश्रय में तो स्वरूप में हूँ ऐसा आता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, उस प्रकार का परिणमन वहाँ निर्विकल्प रूप से निर्विकल्प स्वरूप के आश्रय में होता है। तो वहाँ पर्याय बुद्धि छूट गई, पर्याय का अवलंबन छूट गया और स्वरूप का अवलंबन श्रद्धा से, ज्ञान से और चारित्र से और पुरुषार्थ से हो गया। चारों मुख्य गुण की प्रवृत्ति बराबर हो गई और उसके फल स्वरूप परिणाम में निराकुल सुख शांति और आनंद की उत्पत्ति हो गई, वचनातीत दशा हो गई। उस प्रकार से पहले होते हैं। अब देखो कि बात तो समझ में आई कि पहले होते हैं बाद में ऐसा होता है। अब हमारा वजन कहाँ जाना चाहिए? दो बात हुई, पहले ऐसा होता है बाद में ऐसा होता है। हमारा वजन कहाँ जाना चाहिए? बाद में जहाँ जिया होता है उस पर जाना चाहिए। पहले तो ऐसा होता है ना, पहले तो ऐसा होता है ना। अगर जो इस प्रकार से वजन गया तो ये पहला पहला कभी बाद वाला आएगा नहीं, पहला ही पहला रह जाएगा। और हमको ऐसी बात सुनते हुए बहुत समय हो गया, तो हमारे लिए वो बात पहले वाली रहती नहीं, बाद वाली बात हमको बाकी। आत्मा का विचार तो बहुत किया, बहुत हुआ स्वाध्याय के दौरान, वैसे भी बात की परिस्थिति आई नहीं तो जो कसर रह गई है वो उसको हमें समझनी है कि हमारा वजन दोनों बात समझते हुए भी जहाँ जाना चाहिए वहाँ नहीं गया, इसलिए हमारी परिस्थिति बदली। तो बात तो समझ में आ जाएगी, फिर एक और बात समझ में समझनी पड़ेगी कि वजन कहाँ जाना। दोनों बात समझने के बाद भी हमारा वजन कहाँ होना चाहिए, हमारा लक्ष्य कहाँ होना चाहिए, वो बात पहले से ही हमारे लक्ष्य में ख्याल में होनी चाहिए। तभी तो ये बात समझी वो यथार्थ रूप में। और वजन जाएगा तो पुरुषार्थ उसी ओर चलेगा, तो यथार्थता है। अगर अभेद पर वजन नहीं गया और अभेद का पुरुषार्थ नहीं चालू हुआ तो ये बात समझी नहीं समझी दोनों बराबर है, या तो समझने का अहम भाव हो जाएगा, हम भी जानते हैं, हम भी समझते हैं, हमको मालूम है, ये सब मालूम है। तो तुम्हारा वजन यथा अभेद पर नहीं गया तो तुम समझे, उसमें समझने का अहम भाव हुआ है और कुछ हुआ नहीं है। परिस्थिति सुधरी तो नहीं, बिगड़ी है। उसको समझने से परिस्थिति बिगड़ती भी है और सुधरती भी है। यथार्थता हुए तो सुधरती है, अयथार्थता हुए तो बिगड़ती है। समझ तो समझ है, दो भेद है, यथार्थ और अयथार्थ। मुमुक्षु की भूमिका यथार्थता की होनी चाहिए, तभी वो आगे जा करके मोक्ष मार्ग में प्रवेश करेगा। लिखो, भेद विचार और भेद अनुभव दोनों पर्यायों का क्रम समझाया है यहाँ पर। परंतु यथार्थ समझ में भेद की मुख्यता आती है। भेद गौण हो जाता है। जिसको निर्विकल्प शांति की आवश्यकता है, आवश्यकता लगती है, उसको सहज ऐसा होता है।